ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 112वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र।
आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के 112वें अंक में आज देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कई समकालीन और प्रासंगिक विषयों पर चर्चा की। मन की बात के आज के संस्करण के प्रमुख बिंदुओं पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री अशोक टंडन। अशोक जी, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
अशोक जी, मन की बात के आज के संस्करण पर गौर करें तो आप किन बिंदुओं को रेखांकित करना चाहेंगे? इसमें सबसे प्रमुख मुद्दे क्या हैं आज जो प्रधानमंत्री ने कहा है?
केंद्रीय बजट 2024-25 पेश होने के बाद ये पहला संबोधन था, लेकिन उन्होंने शुरू में बिल्कुल ठीक बात कही कि इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक छाया हुआ है और ओलंपिक हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है और देश के लिए कुछ कर गुजरने का अवसर भी है। पूरे देशवासी भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं, और उन्होंने चीयर फॉर भारत कहा। लेकिन एक और बहुत दिलचस्प बात उन्होंने आज हम लोगों के साथ साझा की, वो थी कि अभी कुछ दिन पहले एक मैथमेटिक्स ओलंपिक हुआ था। मैथमेटिक्स के बारे में भी ओलंपिक होता है ये बहुत कम लोगों को मालूम है, और इस इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपिक में भारत के छात्रों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, 4 स्वर्ण पदक जीते और 1 रजत पदक जीते। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ये जितने भी छात्र भारत के जिन्होंने उसमें भाग लिया था, और इसमें 100 से ज्यादा देशों के, उन सबसे आज प्रधानमंत्री ने बातचीत की, और बातचीत भी एक एक से अलग अलग की। तो कोई तो पुणे में था, कोई नोएडा में था, कहीं कोई गुवाहाटी में थी। इनसे जो आज चर्चा की प्रधानमंत्री ने, बिल्कुल एक अच्छा और दिलचस्प पहलू था मन की बात का, क्योंकि केवल प्रधानमंत्री उसमें अपनी बात नहीं कहते, वो एक संवाद भी करते हैं, और उस संवाद में ऐसा लगता है कि वो उनके साथ, देश के लोगों के साथ जुड़ते हैं। और यही मन की बात कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य भी प्रधानमंत्री का यही था, कोई भाषण नहीं होता, ये संवाद होता है। और इसी कड़ी में उन्होंने असम के चराईदेव मैदान को, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, उसकी भी चर्चा की, और ये कहा कि ये भारत की 43वीं साइट है, लेकिन पूर्वोत्तर की पहली साइट है जिसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। तो प्रधानमंत्री ने उसका फिर विस्तार से भी बताया कि ये साइट क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि हम अगर आगे बढ़ें, प्रोजेक्ट परी के बारे में उन्होंने चर्चा की, पब्लिक आज का लोकप्रिय बनना है और उसमें उभरते हुए कलाकारों को जो एक मंच का माध्यम मिलता है, तो सड़कों के किनारे, दीवारों पर, अंडरपास, और हम देखते हैं बहुत सुंदर पेंटिंग हो रही है आजकल और दिखाई देती है। ये जो परी अभियान है, प्रोजेक्ट परी, वो जो हमारे सार्वजनिक स्थानों की सुंदरता बढ़ रही है और वहीं हमारे जो कल्चर को भी और प्रसिद्ध बनाने में मदद कर रही है। तो ये 3-4 बातें प्रधानमंत्री ने आज शुरू में कही। अगर हम आगे बढ़ें तो और बहुत सी बातें हैं।
जैसे परी की बात की है तो उन्होंने कहा कि ये सार्वजनिक कला को लोकप्रिय बनाने के लिए, उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है, इससे भारतीय संस्कृति को और अधिक लोकप्रिय बनाने में भी मदद मिलती है। उन्होंने दिल्ली के भारत मंडपम और फ्लाईओवर का उदाहरण दिया है। जैसे आगे चर्चा में उन्होंने एक और उन्नति स्वयं सहायता समूह का उल्लेख किया था। भारत में अभी हम देखें तो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसमें स्वयं सहायता समूहों की बहुत बड़ी भूमिका है, और खास करके पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं इस सरकार में और पहले के भी दो शासनकाल में, तो स्वयं सहायता समूहों को काफी बल मिला है, इन्हें काफी बढ़ावा दिया गया है। इनका क्या प्रभाव है और मन की बात में इसे शामिल करने से किस तरह से इसको और विस्तार देने में सहूलियत होगी?
देखिए, उन्होंने इसके लिए हरियाणा के रोहतक जिले की 250 से ज्यादा महिलाओं के जो जीवन में समृद्धि आई है उसका चर्चा किया। यानी हथकरघा उद्योग से जुड़ी ये महिलाएं पहले छोटी छोटी दुकानें और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करती, लेकिन अब ये महिलाएं जब से उन्नति हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी हैं और ब्लॉक प्रिंटिंग और रंगाई में ट्रेनिंग हासिल की है तो कपड़ों पर रंगों का जादू भी खेलने वाली ये महिलाएं आज लाखों रुपए कमा रही। अगर हम आगे बात करें तो प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 अगस्त को हम सब नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं, यानी हथकरघा दिवस मनाया जाता है, और 7 अगस्त को, और जिस तरह से हैंडलूम उत्पादों ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है और उसकी जो सफलता हो रही है, तो अब तो कई निजी कंपनियां भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हैंडलूम उत्पाद और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा दे रही। यानी खादी ग्रामोद्योग का जो कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, और खादी की बिक्री में तो 400% बढ़ोतरी हुई है। यानी खादी की, हैंडलूम की ये बढ़ती हुई बिक्री बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी प्रदान कर रही है, और इस इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को हो रहा है। खादी के वस्त्र इस साल में से फिर से शुरू हो रहा है, तो अगस्त का महीना भी आ रहा है और ये आजादी मिलने का महीना भी है, क्रांति का महीना भी है, तो इससे बढ़िया अवसर क्या होगा कि सभी लोग खादी खरीदें। तो प्रधानमंत्री ने आज इस बात की ओर बहुत महत्वपूर्ण बात कही ताकि लोग जो हैं आगे बढ़ चढ़कर खादी को फिर से अपनाएं और इसके बारे में खरीदारी करें, हैंडलूम दिवस जो है उसको मनाने में भी योगदान करें।
और दिवसों की बात हो रही है तो हम अभी कल की बात करें तो कल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और उसका भी उल्लेख प्रधानमंत्री ने किया है। अगर हम गौर करें तो पिछले कुछ वर्षों में बाघों के संरक्षण में और उनके प्रवर्धन में भारत ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। लगभग जितने अगर हम देखें अभयारण्य हैं उनमें पूरी क्षमता तक बाघ हैं, और अब उनके लिए नए स्थान, नए जंगलों की तलाश भी शुरू करनी पड़ रही है।
कल दुनिया भर में बाघ दिवस मनाया जाएगा, और भारत में तो बाघ जो हैं वो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग भी हैं। हम सब बाघों से जुड़ी हुई किस्से कहानियां सुनते रहते हैं। जंगल के आसपास के गांव में तो हर किसी को पता होता है कि बाघ के साथ तालमेल बिठाकर कैसे चलते हैं। तो कुल मिलाकर जो ये सब बात करते हुए उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत प्रयास की ओर बात, उन्होंने कहा कि जन भागीदारी का एक प्रयास है कुल्हाड़ी बंद पंचायत। ये राजस्थान के रणथंभौर से शुरू हुआ है और अभियान भी दिलचस्प है कि स्थानीय समुदायों ने स्वयं इस बात की शपथ ली है कि वो जंगल में कुल्हाड़ी के साथ नहीं जाएंगे और पेड़ नहीं काटेंगे, और इस फैसले से यहाँ के जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो रहे हैं और बाघों के लिए भी बेहतर वातावरण तैयार हो रहा है। तो बाघों की बहुत चर्चा प्रधानमंत्री ने बहुत विस्तार से की, और उसकी तरह इसी कड़ी में उन्होंने एक पेड़ मां के नाम इसको भी इसी से जोड़ा, और उन्होंने ये कहा कि ये जो सामुदायिक प्रयास हुआ है इसको बहुत सफलता मिल रही। प्रधानमंत्री ने पिछले मन की बात के एपिसोड में इस कार्यक्रम की चर्चा की थी और कहा कि बहुत खुशी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, और अभी भी उन्होंने कहा कि लोग इसमें जुड़े हैं। और इस विषय में उन्होंने इंदौर का उदाहरण दिया कि इंदौर में शानदार कार्यक्रम हुआ और यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए, और वो सब इसी कार्यक्रम अपनी माँ के नाम एक पेड़ अभियान से जुड़े हुए थे। तो अभी भी उन्होंने देशवासियों को यही कहा कि आप सब लोग भी इसके साथ जुड़ें।
पर्यावरण का मुद्दा तो हमेशा से प्रधानमंत्री के दिल के बहुत करीब रहा है और समय समय पर इसके लिए संदेश भी देते रहे हैं। और वैसे हम मन की बात पर गौर करें तो इसमें सिर्फ उपलब्धियां ही नहीं है बल्कि कई बार प्रधानमंत्री ज्वलंत समस्याओं का भी उल्लेख करते हैं और लोगों को उनके समाधान की ओर भी प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। जैसे इस बार उन्होंने मादक पदार्थों की समस्या का उल्लेख किया है कि देश के कई इलाकों में इससे काफी नुकसान हो रहा है, खासकर के युवा पीढ़ी को इससे बचाने की बहुत जरूरत है।
इस विषय पर प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया, ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई करें इसके लिए एक मानस हेल्पलाइन का भी उपयोग करने की बात कही, और उन्होंने कहा अगर किसी के पास ड्रग्स से जुड़ी कोई दूसरी जानकारी भी है तो उसके लिए भी वो इस नंबर पर फोन करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ साझा कर सकते हैं। तो मानस के साथ साझा की गई हर जानकारी गोपनीय भी रखी जाती है। तो भारत को ड्रग्स भी बनाने में जुटे सभी लोगों से और सभी परिवारों से और सभी संस्थाओं से प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि वो मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग कर लें, और सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम मानस ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत बड़ा कदम है। हेल्पलाइन का जो पोर्टल लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री ने उस टोल फ्री नंबर का भी जिक्र किया, यानी 1-933-1933 है और इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर से जुड़ी जानकारी दे भी सकता है और ले भी सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात किया।
अगर हम देखें आगे अभी जिस पर बात हुई है और खासकर कर हम जोड़ते हैं, आप हथकरघा और खादी का उल्लेख आपने किया है, प्रधानमंत्री ने अभी 15 अगस्त के लिए हर घर तिरंगा, पहले के सालों में भी इसका उल्लेख होता रहा है, अभी फिर से ये बात दोहराई है। एक बार फिर अभी हम देखने जा रहे हैं अगले ही महीने 15 अगस्त को उन्होंने कहा है कि हर कोई अपने घर में तिरंगा फहराए और हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जाए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी 15 अगस्त दूर नहीं है, 15 अगस्त के साथ जो हमने एक अभियान जोड़ा है वो है हर घर तिरंगा अभियान। और पिछले कुछ वर्षों से तो पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए इतना जोश उमड़ रहा है, चाहे फिर वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, हर कोई तिरंगा लहराकर गर्व का अनुभव करता है और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट करने का भी एक नया क्रेज बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बात पर गौर किया गया होगा, जब कोई कॉलोनी हो या सोसाइटी के एक घर पर तिरंगा लहराता है तो देखते ही देखते सभी घरों पर तिरंगा दिखने लगता है। तो इसी से हर घर तिरंगा अभियान की जो सफलता है और तिरंगे की शान में जो एक यूनिक फेस्टिवल बन गया है, इसको लेकर तो आज तरह तरह की इनोवेशन भी होने लगे। यानी 15 अगस्त आते आते घरों में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के नए प्रोडक्ट दिखने लगे। कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी हैं और तिरंगा को लेकर ये जो उल्लास है ये हमें एक दूसरे से जोड़ता भी है। तभी इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा इस साल भी सब लोग हरघरतिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करें। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ, हर साल 15 अगस्त से पहले आप सब लोग प्रधानमंत्री को ढेर सारे सुझाव भी भेजते हैं और इस साल भी आप सुझाव जरूर भेजिए और प्रधानमंत्री का माई गॉव या नामो ऐप पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। और ये सुझाव जो हैं प्रधानमंत्री इन पर विचार करके इन सुझावों को जो अपना 15 अगस्त को लाल किले से संबोधन होता है उसमें भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। ये एक अपनी तरह का अनूठा संवाद है जो प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ करते हैं और उनसे सुझाव भी मांगते हैं और उन सुझावों पर वो अमल भी करते हैं। और विशेष तौर से 15 अगस्त का जो भाषण है उसमें अगर लोगों के सुझाव भी शामिल हों, मैं समझता हूँ कि जनता के साथ संवाद का इसका कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन की बात के एपिसोड होते हैं, उसके लिए भी लोगों के सुझाव उनको मिलते हैं और वो सुझाव उनको वो स्वागत भी करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो जन भागीदारी का जो प्रयास है वो मन की बात जो लोगों के सुझाव से जुड़ता है और उसके चलते ही मन की बात सफल हो रहा है। अंत में उन्होंने ये भी कहा कि कई त्योहार आने वाले हैं और इन त्योहारों की उन्होंने शुभकामनाएं भी दी और ये भी कहा कि सब लोग परिवार के साथ इन त्योहारों का आनंद उठाएं और देश के लिए कुछ न कुछ नया करने की ऊर्जा निरंतर बनाए रखें। ये जो एक लगातार प्रधानमंत्री लोगों में उत्साह भरते रहते हैं, उनको किसी न किसी सामाजिक काम में जोड़ने की कोशिश करते हैं और जो लोग सामाजिक काम कर रहे होते हैं उनकी जो प्रशंसा करते हैं और उनके साथ संवाद करते हैं, तो इसी कारण ही ये मन की बात एक सफलतम संवाद का और भागीदारी का एक कार्यक्रम आज तक बन सका है।
अशोक जी, सुर्खियों में कार्यक्रम से जुड़ने और मन की बात के 112वें अंक पर चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम की 112वीं संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।